दौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 16 ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् जय उधरसेननाहो जेन महाकम्मपयणिपाहुडसेलो बुद्धिशिरेणोद्धरियो समप्यो फुफयन्तस्सः। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो द्वितीय खंड, इसका नाम है खुद्दाबंध। पहले खंड का नाम याद है? जीवस्थान। पूरा पहला खंड 6 पुस्तकों का था, ये 7वीं पुस्तक है। बंधक की प्ररूपणा यहाँ है और हम 7वीं पुस्तक के 129 पृष्ठ पर आए, 129। यह हमने नारकियों की बात देखी थी कि काल की प्ररूपणा चल रही ना, एक जीव की अपेक्षा काल। तो नरकों में हमने देखी थी जघन्य आयु कितनी, उत्कृष्ट कितनी है, और एक एक नरक की बात अलग अलग देखी थी। फिर तीर्यंच मनुष्य की बात देखी, अभी देवों की बात चल रही थी। देवों में हमने भवनवासी की बात देखी थी, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी। उसमें भवनवासी और व्यंतरों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की, और ज्योतिषियों की जघन्य पल्ले के 8वें भाग प्रमाण। उत्कृष्ट आयु में भवनवासियों के साधिक सागर, व्यंतरों के लिए साधिक एक पल्य और ज्योतिषी के लिए भी साधिक एक पल्य। ये जो साधिक बताया था वो ऊपर की देवायु बांधकर फिर अधिक बांधकर घात करते हैं, उसकी अपेक्षा से बताया, जिसको घातायुष्क कहते हैं। देखो, हमने 129 पृष्ठ पर एक पैराग्राफ पढ़ा था। हाँ, आपका प्रश्न है घातायुष्क और कदली घात में क्या फर्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है। घातायुष्क जो हम आगामी भव संबंधी आयु बांधते हैं, जैसे हम मनुष्य है और हमने आगामी देवायु बांधी और फिर परिणाम ऐसे कुछ हो गए संकलेश की वो बांधी हुई आयु कम हो गई, बंधी हुई आगामी, हाँ देव आयु जिसको कहेंगे, वो कम होना उसको कहेंगे घातायुष्क। फिर वो घात की हुई आयु को लेकर वहां जन्मेगा। पहले अधिक बांधी थी, परिणाम तो उलट पुलट कुछ भी हो सकते हैं। किसी समय दृष्टि ने बांधे, बाद में मिथ्या दृष्टि होकर भी उसके संकलेश परिणाम हुए। एक बार आयु बंधी तो उसमें तो कोई उस आयु में तो जाना ही है, परंतु परिणामों के वश वो आयु कम हो सकती है। आयु बढ़ती नहीं है, बढ़ने के लिए नया बंध होना चाहिए, ये कंडीशन है। आयु का उत्कर्षण होने के लिए बंधी हुई आयु में फिर दोबारा 8 बार तो आयु बनती है, तो 8 बार में नेक्स्ट बार अगर अधिक बढ़कर बंधी तो वो आयु भोगेगा उसमें। श्रेणिक राजा ने उसने 7वें नरक की 33 सागर की बांधी थी, कभी मिथ्या दृष्टि था और मुनियों को उपसर्ग किया था। अब जब वो फिर बाद में समय दर्शन हुआ, क्षयिक समय दृष्टि हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो परिणामों के वर्ष उसकी आयु घटकर 84,000 वर्ष की रहेगी, मिनिमम रहेगी वहां की, इससे मिनिमम नहीं हो सकती थी। समय दृष्टियों को ये नरकायु इतनी मिनिमम है उनकी।
तो
कम यानी वो तो नरकायु घट जाएगी, परंतु नरक में तो जाना ही पड़ा। अभी ये तो तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रही, फिर भी नरक में तो जाना है उनके, नरकायु बंदी है ऑलरेडी। हाँ, और कदली घात जो हम वर्तमान में जो आयु भोग रहे, वर्तमान अब हमारी मनुष्य आयु है, ये हमने कब बांधी थी, पूर्व भव में। तो हमने मान लेते हैं ना कि 100 साल की आयु हम बांध के आए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आयु कब बांधने का अवसर आएगा, 100 साल का 1/3, समझे ना, 33 पॉइंट समथिंग। तो अभी 25 साल का है अभी कोई युवा, और उसके वर्तमान जो भोग रहा है आयु वो कट डाउन हो जाती है। तो उसने 25वें साल में मान लेते कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ विषभक्षण किया, अन्य जो कुछ कारण की वजह से, तो 100 साल के जितने निषेक थे अभी वो घटकर वो 25 जो बीत गए ना उससे आधे के भी छोटे हो जाएंगे। मान लेते ना कि 5 मिनट में सारे निषेक, 5 मिनट के जितने निषेक है उतने में वो सारे परमाणु समा गए। अब वो यहाँ आयु भी बांधेगा और फिर मरण होगा, उसको कहेंगे कदली घात से मरण। ये कदली घात तो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में होता है, घातायुष का तो किसी में भी हो सकता है। मनुष्य में तो होगा ना, क्योंकि पल्ले की बांधी है मान लेते हैं, फिर वो घर कट गई, ये हो सकता है। परंतु देवों में और नारकियों में मुख्यता से बताते हैं ना। इन तीनों देवलोकों में, ये हमने कल भवनवासी का एक पैराग्राफ पढ़ा था, तो कहते इन तीनों देवलोकों में, कौन से, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु पर्यंत उत्तरोत्तर यानी एक एक बढ़ते हुए एक एक समय अधिक क्रम से आयु बढ़ती है। बढ़ती है ना, अन्य अन्य जीवों की अन्य अन्य एक एक समय से बढ़ती हुई आयु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ प्रस्तरों का अभाव है। यानी जैसे हमने नरकों में देखा था, अलग अलग पाथड़ों में तो देखी थी, यहाँ तो वो कुछ कहने की बात ही नहीं है, बस एक एक समय से बढ़ते हुए आयु के अनेक विकल्प है। शेष पाथड़े, पटल, प्रस्तर कहो, पटल कहो, पाथड़े कहो, एक ही बात है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब स्वधर्म आदि की बात करेंगे। यहाँ पर 31 नंबर का सूत्र, सोहम मिसाण मिसासन हुआ है, सोधम मिसाण चाहिए, एक सौ एक्स्ट्रा हुआ है वहां पर आपके उसमें, बराबर है, साण है के शासन। सोहम मिसाण पहुड़ी जाव सदर सहसार कप्पवासीय देवा केवल चिरम कालादो होंती। यानी जीव सौधर्म ईशान से लेकर शतार सहसार पर्यंत कल्पवासी देव वहां कितने काल तक रहते हैं, यानी उनकी आयु कितनी है जघन्य और उत्कृष्ट। जो स्वर्ग, जो दो दो युगल, एक एक युगल जो है वो एक लेवल पर है, उनकी आयु समान है। सौधर्म और ईशान, सौधर्म दक्षिण की ओर है, ईशान उत्तर की ओर है। यह सूत्र सुगम है, यानी वो प्रश्न समझ में आवे ऐसा है। जहन्नेन पलिदवमं वे सत्त दस चौदस सोलस सागरोवमानी साधीरियानी, यानी हर एक की जघन्य बताए, कहाँ से सौधर्म ईशान को लेकर पल्यपम और साधिक में एक समय अधिक कर देना उसके, फिर दो सागर, दो सागर में एक समय अधिक, किसकी, सनत कुमार और महेंद्र के, सात सागर और एक समय, यानी पलिदों में पहले दूसरे स्वर्ग की बात, बे सागरोपम तीसरा चौथा, सनत कुमार महेंद्र, फिर आगे का नंबर क्या है, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर दस है लांतो का पिष्ठ शुक्र महाशुक्र चौदस वाले को, और सोलस जो सागर है वो शतार सहस्रार के लिए 11वें 12वें स्वर्ग। साधीर यानी सातिरेक यानी एक समय अधिक, क्योंकि नीचे के जो अधिक जघन्य उत्कृष्ट होती उसमें एक समय बढ़ता है ऊपर। अब हिंदी में पढ़ेंगे, जघन्य से स हुआ है, जघन्य से सातिरेक, सातिरेक यानी साधिक यानी अधिक, एक पल्यपम, दो सागरोपम, सात सागरोपम, दस सागरोपम, 14 सागरोपम, वो 16 सागरोपम काल तक जीव सौधर्म ईशान से लेकर शतार सहस्रार तक के कल्पवासी देव रहते, ये तो जघन्य आयु बता रहे हैं, नहीं तो हम हमें याद है ना वो साधिक अठारह वो तो उत्कृष्ट है शतार सहस्रार की। सौधर्म और ईशान स्वर्गों में डेढ़ पल्योपम जघन्य आयु है, अच्छा यहाँ डेढ़ है सॉरी, एक समय अधिक नहीं। सनत कुमार और महेंद्र स्वर्गों में 250 सागरों, अरे अच्छा 250 वाला जो नीचे का घातायुष कर लिया उसमें अधिक लिया, एक्चुअली ये जघन्य है, सातिर एक लिखा ना साधिक, साधिक में उसको वहां लिया आधा सागर नीति, नीचे के घातायुष्क था ना वो घातायुष्क के ऊपर एक समय बढ़ाया, पर हमने बंधनी आयु वहां की देखी थी ना वो, मुझे भी वैसे लगा, पर यहाँ तो मूल में ऊपर लिखा है ना, ऐसा नहीं वो विशेषार्थ नहीं है। सौदम में ईशानेशु दिवड्ढ पलिदोम जहन्ना हुआ, सनक कुमार माहिंदेशु 250 मा सागरो उमाने, पढ़ेंगे अभी इसको। सौधर में ईशान में डेढ़ पल्योपम जघन्य आयु, सनत कुमार और महेंद्र स्वर्गों में 250 सागरोपम, ब्रह्म और ब्रह्मत्तर स्वर्गों में 7.5 सागरोपम, लांत और कापिष्ट स्वर्गों में 10.5 सागरोपम, शुक्र और महाशुक्र में 14.5 सागरोपम तथा शतार और सहस्रार स्वर्गों में 16.5 सागरोपम जघन्य आयु है। मैंने आधा सागर ज्यादा लिया वहां पर और पल्ले में आधा पल्ले ज्यादा लिया। अब उत्कृष्ट बताएंगे। उक्कस सेना वे 7, 10, 14, 16, 18 सागरों मानी सादी रही, यानी उत्कृष्ट से सातिरेक 2, 7, 10, 14, 16 व 18 सागरोपम काल तक जीव सौधर्म ईशान आदि कल्पों में रहते हैं। सौधर्म ईशान कल्पों में कुछ कम 250 सागरोपम, सनत कुमार महेंद्र में कुछ कम 7.5 सागरोपम, कुछ कम इसलिए वो अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा रहती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में कुछ कम 10.5 सागरोपम, लांतो कापिष्ट में कुछ कम 14.5 सागरोपम, शुक्र महाशुक्र में कुछ कम 16.5 सागरोपम तथा शतार सहस्रार कल्पों में कुछ कम 18.5 सागरोपम उत्कृष्ट आयु प्रमाण होता है। यहाँ देशों अर्थात कुछ का प्रमाण जानकर कहना चाहिए। कुछ कम यानी वो अंतर्मूर्त कम आधा सागर, वो तो घातायुष्क की अपेक्षा बताया जाता है। पूर्वोक्त तो दोनों सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि अभी यहाँ जैसे नरकों में हमने एक एक नरक की देखी थी परंतु उसमें पटल जुदे जुदे होते हैं, तो यहाँ स्वर्गों में भी पटल होते हैं तो यहाँ बताएंगे उसमें, इसलिए इनके द्वारा सूचित अर्थ का प्ररूपण करते हैं वही इस प्रकार है। अब जैसे नरकों में तो 13, 11, 9 ऐसे हमने देखे थे, स्वर्गों में पहले दूसरे स्वर्गों में 31 पटल है। हाँ देखो उनके नाम बता रहे हैं यहाँ, ये बीच वाला जो इंद्र का भी इंद्रक को विमान कहेंगे, सेंटर वाला जो होता है उसको इंद्रक कहते हैं और इंद्रक विमान, ऋतु विमल चंद्र वल्ग वीर अरुण नंदन नलिन कांचन रुधिर चंच मरुत, उसी का दूसरा नाम है मारुतज्ञ रुद्धीश या द्वीश वैडूर्य रुचक रुचिर अडग अडक स्फटिक तपनीय मेघ का मेव क्या लिखा है, मेव और कौन ब्रैकेट में मेघ होगा शायद। अभ्र हरित पद्म लोही ताड़क वरिष्ठ नंदावर्त प्रभंकर पिष्टाक, ये गज जुदा है कि उसी का फॉर्मा रह गया, कितना है बारह तेरह नंबर डालेंगे तो पता चल गया, चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, हाँ अलग अलग है। पिष्टा के बाद कॉमा लगाना। गज मित्र और प्रभा 31 नंबर का। इन नामों के 31 प्रस्तर सौधर्म ईशान कल्प में है, ये सौधर्म हुआ है, सौधर्म चाहिए। इनमें से ऋतु नामक प्रथम प्रस्तर में जघन्य आयु डेढ़ पल्योपम व उत्कृष्ट आयु अर्ध सागरोपम प्रमाण है। अब यहाँ द्वितीय आदि 30 इंद्रकों में, क्योंकि अभी बचे 30 ना, तो उसमें वृद्धि का प्रमाण कहेंगे, वृद्धि का प्रमाण कहते हैं। वहां अर्ध सागरोपम मुख है और अढ़ाई सागरोपम भूमि है। क्योंकि डेढ़ पल्ले उसकी मिनिमम आयु और मैक्सिमम आधा सागर है, तो आधा सागर से लेकर मैक्सिमम जहां बढ़ेगी उसकी बात करेंगे, ढाई सागर तक बढ़ाना है, यानी डिफरेंस दो सागर का होगा। अब यहाँ द्वितीय आदि 30 इंद्रकों में वृद्धि का प्रमाण कहते हैं, क्योंकि वृद्धि तो दूसरे से लगाकर होगी, 30 में वृद्धि होगी। वहां अर्ध सागरोपम मुख है, जैसे हमने पहले नरकों में देखा था, और अढ़ाई सागरोपम भूमि है, यानी अंतिम जो 30 नंबर जिसको हम कहेंगे है 31वां पटल, परंतु उसको नंबर 30 देंगे तो उसमें ढाई सागरोपम होगा। अतएव भूमि में से मुख को घटाकर उच्छ्रय अर्थात उच्छेद 30, क्योंकि 30 बार वृद्धि होनी है, उससे भाग देने पर, यानी दो ढाई में से आधा गया तो दो रह गए, और उसको 30 से भाग दिया, दो तीसांश यानी 1/15, एक सागरोपम का 15 भाग वृद्धि का प्रमाण आता है, प्रति पटल 1/15 वृद्धि होगी। इस 1/15 को अभीष्ट प्रस्तर की संख्या से गुणित करके डायरेक्ट हमको संख्या 10 है, यानी वो तो पटल 11वां होगा, उसकी संख्या निकालना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10/15 हो जाएगा, और वो ओरिजिनल आधे में मिला देना है, ख्याल में आई ना बात, मुख में मिला देने पर विमलादिक 30 प्रस्तारों की आयु का प्रमाण होता है। विमलादिक यानी क्योंकि सेकंड का नाम है विमल, उनकी संदृष्टि इस प्रकार है, ऊपर जो बताया ना मूल में देखिए ना, यहाँ दोबारा वो छापी नहीं है, ऊपर ही लिखा है, एक पंद्रह बढ़ते बढ़ते हैं। उन्हें नंबरिंग नहीं दिए है ना, इसलिए डायरेक्ट उन्होंने लिखे उसमें, यानी ऊपर अगर नंबर देंगे 1, 2, 3, 4 ऊपर जो स्क्वायर सेट ना उसके नीचे के लाइन में नंबरिंग करेंगे 17, 18, 19, ऊपर 20 है, 30 नंबरिंग की है ना, यानी उसका प्रस्तर का नंबर एक एक अधिक होगा। हाँ, परंतु ये उसका हिसाब निकालने के लिए वो पटल नंबर 2 लिखना, पर उसका क्रमांक 1 लिखना पड़ेगा। जैसे हमने नरकों में 4 को 1 नंबर दिया था, उस तरह से करना पड़ेगा। तो मूल में हमने क्या देखा था कि पहले की कितना है, आधा आधा सागर है, और हर बार उसमें कितने की वृद्धि होती है, 1/15 की, यानी 1/12 प्लस 1/15। 1/15 कहो या 2/3 कहो, एक ही बात है। यानी 15/3 प्लस 2/3, 17/3 हो गया। यहाँ पर समझ में है, वहां ऊपर 17/3 कैसे लिखा नहीं समझे। आधा सागर 1/12 के बदले 15/3 पकड़ो ना, और उसमें कितना मिलाना है, 2/3 मिलाना है, तो 17/3 हो गया। वो 17/3 में और 2 मिला है, 2/3 तो 19/3, उसमें और 2 मिलाएगी तो 21/3 हो जाते हैं। 21/30 को ही उन्होंने 7/10 लिखा है। 7/10 का अर्थ क्या है, 21/30। नहीं समझे, देखो फिर से एक एक स्क्वायर देखो। पहले स्क्वायर में क्या लिखा है, 17/30, वो तो समझ में है ना कैसे आया। अभी उसी में और मिलाते जाओ, उसमें 2/30 मिला है, 17 में 2 19/30 हुआ, उसमें 2 मिलाने पर 21/30 हो जाएगा। उसको अपवर्तन करने पर 3 से भाग दो तो 7/10 हो जाता है। अभी 21/3 में और 2 मिलाओ तो 23/3 हो जाते हैं। 23/3 में और 2 मिला तो 25/3 होते हैं। 25/30 का ही अर्थ होता है 5 से भाग देने पर 5/6। समझ में आई ना, ये कैसे बीच में अटपटी बात लगती है। तो 25/3 में और 2 मिला दो 27/3 होते हैं। 27/3 का ही अर्थ है उसको 3 से भाग देने पर 3×9=27, 9/10 हो जाते हैं। उसके बाद 29/3 हो जाते हैं। उसके बाद 31/3, 31/3 का अर्थ होता है 1/31। समझ में आई बात, क्योंकि आगे अलग वैसे लिखेंगे। यानी 1/31 हुआ, उसमें और 2/3 मिला दिए, 1/3 हो गए। उसी को 33/30 हो जाते हैं, यानी 11/10 की है। क्यों लिखा है उसका हमको अर्थ देखना है। यानी वो 31/3 हुए थे, उसके बाद और 33/3 हुए थे ना, उसके बाद 35/3 हो गए, यानी 7/6 हो गए। समझ में आती बात ये। फिर 37/30 हो जाते हैं, यानी 1/7 हो जाते हैं। उसके आगे 39/30 होते हैं, तो 39/30 को 3 से भाग दो, हाँ 13/10 हो जाते हैं। उसके आगे 39/30 थे, वो 41/30 हो जाते हैं, वही 43/30 हो जाते हैं, वही 45/30 होते हैं। 45/30 उसको 15 से भाग दो, 3/3 हो जाते हैं। वो 2 बराबर किया है कि उसमें 3/3 है क्या। फिर वो 47/30 हो जाते हैं, फिर 49/30, 49 के बाद 51/30 होते हैं। 3 का भाग देंगे तो 17/10 हो जाते हैं। 49 के बाद 51/30 हो जाएंगे, और 51 के सॉरी 51 के बाद 53 बटे 30 हो जाता, 53 है वो, और फिर 55 बटे 30। हाँ, जब 55 को हम भाग देंगे 5 का तो 11 बटे 6 हो जाते हैं। उसके बाद 57/30 होते हैं, तो उसी को हमने 3 से भाग देंगे तो 19/10 हो जाते हैं। आगे 59/30 हो जाते हैं, आगे 61/30 होते हैं, उसके बाद 63/30 हो जाएंगे, 3 से भाग देने पर 21/10 हो जाते हैं। 63 के बाद 65, वो कितने, वो बराबर संख्या दिखती नहीं है, 65/30, हाँ 13/6 हो जाते हैं। उसके बाद 67/30, वो 30 दिख रहा है क्या बराबर? उसके बाद 69/30, यानी उसको अगर भाग दे दो हाँ तो 23/10 हो जाता है। उसके बाद 71/30, 73/30, और फिर 75/30, यानी 5/5, ने 2.5 सागर हो गया। देखो किसमें कितने प्रस्तर है मालूम है? सौधर्म ईशान में तो 31 अभी हमने देखे, फिर शतार सहस्रार सनत कुमार महेंद्र में 7 होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि पहले में पहले दूसरे में 31 पटल है, तीसरे चौथे में 7 ही पटल है, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर पांचवा छठा जो है उसमें 4 है, लांतो का पृष्ठ में 2 है, शुक्र महाशुक्र में 1 है, शतार महासरसरार में 1 है, आनत प्राणत में 3 है, फिर आरण अच्युत में 3 है, 9 ग्रहों की एक एक के एक एक यानी 9 है, अनुदिश का 1 और अनुत्तर का 1, इस तरह। अब यहां पूछते हैं शंका, ये हमने पढ़ा क्या? हम नहीं, शंका के ऊपर का भी हमने पढ़ा नहीं था, पढ़ेंगे पहले लाइन से फिर पढ़ते। इनमें से ऋतु नामक प्रथम प्रस्तर में जघन्यायु डेढ़ पल्योपम, उत्कृष्ट आयु अर्ध सागरूपम, केवल पहले की बात है। अब यहाँ द्वितीय आदि दूसरे से लेकर 30 इंद्रकों में वृद्धि का प्रमाण कहते हैं, वहाँ अर्ध सागरोपम मुख है, यानी नीचे का जो उत्कृष्ट है उसको मुख किया, और 2.5 सागरोपम भूमि है, अतएव भूमि में से मुख को घटाकर उच्छ्रय अर्थात उच्छेद से भाग देने पर, 2.5 से आधा कम किया तो और 30 का भाग दिया, 1/15, 1 सागरोपम का 15 भाग वृद्धि का प्रमाण आता है। इस 1/15 को अभीष्ट प्रस्तर की संख्या से गुणित करके मुख में मिला देने पर विमलाधिक 30 प्रस्तरों की आयु का प्रमाण होता है, उनकी संदृष्टि इस प्रकार ही हमने पढ़ा था, मूल में देख वो हमने देख लिया। शंका, सौधर्म ईशान कल्प में 31 प्रस्तर विमान प्रस्तर है, यह कैसे जाना? समाधान, सौधर्म ईशान कल्पों में 31 विमान प्रस्तर है, सानत को गाथा है क्या ऊपर? गाथा है, गाथा ऊपर, क्योंकि मूल सूत्र गाथा है ना, उससे जाना जाता है। 31 सत्त चत्तारी दोन्नी एक एक छक्क एकाए, उद्वादि विमान इंदा तिरधीय सठी मुने यौवा। 63 होती है ना तिरधीय सठी, उसका अर्थ है सौधर्म ईशान कल्पों में 31 विमान प्रस्तर है, सानत कुमार महेंद्र कल्पों में 7, ब्रह्म ब्रह्मोत्तरों में 4, लांतो कापिष्ठ में 2, शुक्र महाशुक्र में 1, शतार सहस्रार में 1, आनत प्राणत और आरण उच्चुत कल्पों में 6, यानी 3 और 3 मिलकर, तथा 9 ग्रेवकों में 1-1, अनुदिशों में 1 और अनुत्तर विमानों में 1, इस प्रकार ऋतु आदि इंद्रक विमान 63 जानना चाहिए। प्रत्येक पटल में एक इंद्रक है, इसलिए 63 पटल भी होते हैं, 63 ऋतु है, ये ऋतु इंद्रक है। इस आर्ष वचन से जाना जाता है, पेज नंबर 132 कि सौधर्म ईशान कल्प में 31 प्रस्तर है। अब ये 7 प्रस्तर बताएंगे, अंजन, वनमाल, नाग, गरुड़, लांगल, बलभद्र और चक्र, ये 7 प्रस्तर सनत कुमार माहेंद्र कल्पों में है। उनमें आयु का प्रमाण लाने पर मुख 2.5 सागरोपम, भूमि 7.5 सागरोपम और उच्छेद 7 है। अब यहाँ एक पहले पटल को पर एक ही नंबर देना है, क्योंकि नीचे के स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु को हमने मुख बनाया है, वो 2.5 सागर था ना वहां पर, तो यहाँ वृद्धि का प्रमाण हुआ, 7.5 में से 2.5 गए और उसको 7 से भाग देंगे, यानी 5 सप्तमोश। यह प्रथम प्रस्तर का आयु प्रमाण हुआ, यानी 2.5 में 5 सप्तमोश मिला लेंगे तो 45/14 हो जाता है। ये कैसे आया समझ में आया, 5 द्वितीयांश प्लस 5 सप्तमोश। अभी दोनों जगह नीचे समच्छेद कहते हैं, उसको 14 बनाना है, तो पहले में 7-7 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगी, 35/14 प्लस यहाँ 2-2 से गुणा करना, 10/14 तो 45/14 हो जाते हैं। और उसको पूर्णांकों में लिखना है, 14×42 और ऊपर 3/14। इसी प्रकार वृद्धि में इष्ट प्रस्तर की संख्या का गुणा करके, हमको डायरेक्ट 5वें प्रस्तर की संख्या चाहिए तो 5 से गुणा करो उसको। मुख में जोड़ने से वनमाल, वनमाल ये सेकंड है ना, आयु का प्रमाण 3.13×14 ये क्या क्या हुआ, ये 3.13 अच्छा 13/14 ऊपर हमने 3/14 देखा था ना, यानी 5 सप्तमांश यानी 10/14 मिला ना, वहां 3 था या 13 हो गया, 3.13×14 उसमें और 10/14 मिला देना, 23/14 उसमें पूर्णांक में चला जाएंगे, तो 4.9×14 गरुड़ में 5.5×14 लांगल में 6.1×14 बलभद्र में 6.11×14 और चक्र में 7.1×12 आता है। तो ये सनत कुमार महेंद्र के हो गए। अभी ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के बताएंगे, अरिष्ट, देव समित, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, ये 4 विमान प्रस्तर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पों में हैं। इनकी आयु का प्रमाण मुख 7.5, जो नीचे के सनत कुमार महेंद्र का उत्कृष्ट था वो मुख हो गया, भूमि 10.5 और उच्छेद 4, क्योंकि 4 पटल है। पूर्वोक्त विधि के अनुसार तो क्या करना है, विधि 10.5 में 7.5 गए तो 3 आ गए और 3 को 4 से भाग देंगे, यानी 3/4 मिलाते जाना, ओरिजिनल कितना था 7.5 में 3/4 मिला दिए, तो अरिष्ट में 7.5 में 3/4 मिला दिए तो 8.1×14 हो जाते हैं। उसमें और 3/4 मिला देने पर देव समेत में 9 हो जाते हैं, उसमें 3/4 मिलाएंगे, ब्रह्म में 9.3× होते हैं, उसमें और 3/4 मिला देंगे तो ब्रह्मोत्तर में 10.5 हो जाते हैं सागर। समझ में आया ना ये। अब लांतो कापिष्ठ में 2 प्रस्तर है, ब्रह्म निलय और लांतो। ये लांतो कापिष्ठ कल्पों में 2 विमान प्रस्तर है, जिनमें पूर्वोक्त विधि के अनुसार आयु का प्रमाण इस प्रकार है। अब यहाँ की मैक्सिमम कितनी है तो 14.5, उसमें नीचे के स्वर्ग की लेना 10.5 तो उसको माइनस करेंगे तो चार आ गए, यहाँ दो प्रस्तर है तो दो से भाग देंगे तो दो उनकी हानि वृद्धि का प्रमाण है। नीचे से ऊपर हम वृद्धि कहेंगे, ऊपर से नीचे हानि कहेंगे। तो पहले में साढ़े दस में दो मिला दो तो साढ़े बारह हो जाते हैं, उसमें और दो मिला दो साढ़े चौदह हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म निलय में साढ़े बारह सागर और लांतों में साढ़े चौदह सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। शुक्र महाशुक्र कल्पों में महाशुक्र नाम का एक ही प्रस्तर है, वहां आयु का प्रमाण की संदृष्टि साढ़े सोलह सागर है। एक ही प्रस्तर है तो उसमें कोई गणित करने की जरूरत नहीं है। शतार सहस्रार कल्पों में सहस्रार नाम का एक ही प्रस्तर है, उसमें आयु प्रमाण है साढ़े अठारह सागर। ये उत्कृष्ट की बात चल रही है अपनी। अब आगे आनद पहुड़ी जाव अवयराई द विमान वास्य देवा केवचिरम कालाद होती। आनत कल्प से लेकर अपराजित कल्प तक के विमान वासी देव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन नैन अठारस बीस बाईसम तेवीसम चौबीसम पणुवीसम छब्बीसम सत्तावीसम अट्ठावीसम एगुणतीसम तीसम इकतीसम बत्तीसम सागरोमाणी सादिरेयाणी। जघन्य से सातिरेक अठारह बीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस व बत्तीस सागरोपम काल तक क्रमशः, ये देव जीव निकाल दोनों वहां पर, क्रमशः अनंत आदि अपराजित विमानवासी देव रहते हैं। देखो आनत प्राणत कल्प में जघन्य आयु प्रमाण साढ़े अठारह सागरोपम व आरण अच्युत कल्प में एक समय अधिक बीस सागरोपम। यहाँ एक समय अधिक बीस कहा क्योंकि ऊपर जो है वो घातायुष्क से बढ़ने वाली वो बात नहीं रहती है। इससे ऊपर नौ ग्रहवेकों में क्रमशः सुदर्शन में बाईस अमोघ में तेईस सुप्रबुद्ध में चौबीस यशोधर में पच्चीस सुभद्र में छब्बीस विशाल में सत्ताईस सुमनस में अट्ठाईस सौमनस में उनतीस और प्रीतिंकर में तीस सागरोम प्रमाण जघन्य आयु स्थिति है। उसमें एक समय ज्यादा हो जाएगा। ग्रहवेकों से ऊपर अर्चिष अर्चिमाली आदि नव अनुदिशों में एक समय अधिक इकतीस सागरोपम प्रमाण जघन्य आयु स्थिति है। अनुदिशों से ऊपर विजय वैजयंत जयंत और अपराजित इन चार अनुत्तर विमानों में एक समय अधिक बत्तीस सागरोपम प्रमाण जघन्य आयु है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं होता। यानी ऊपर जो नीचे जो साधिक में आधा सागर ज्यादा लेते थे, अब ऊपर जो है वो एक एक समय अधिक लेना, सहस्रार के ऊपर की बात है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अभी उत्कृष्ट आयु बताएंगे। उपकस सेना बीसम बावीसम तेवीसम चौबीसम पणुवीसम छब्बीसम सत्तावीसम अट्ठावीसम एगुणतीसम तीसम इकतीसम बत्तीसम तेतीसम सागरो वमाणी। उत्कृष्ट से बीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस और तेतीस सागरोपम काल तक जीव आनत प्राणत आदि विमानवासी देव रहते हैं। इन उत्कृष्ट आयुओं को जघन्य आयु के विवरणानुसार योजित कर लेना चाहिए। अर्थात आनत प्राणत में उत्कृष्ट आयु 20 सागरोपम व आरण अच्युत में 22 सागरोपम, नव ग्रहवेकों में क्रमशः ये 23 से लेकर 31 तक हो गए, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 9 अनिदेशों में 32 सागरोपम है और 4 अनुत्तर विमानों में 33 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। अब कहते जघन्य और उत्कृष्ट आयु स्थिति का निर्देश करने वाले उपर्युक्त दोनों सूत्र देशामर्शक है, अतः उनके द्वारा सूचित किए गए अर्थ की यहाँ प्ररूपणा की जाती है। अब यहाँ अधिक से एक से अधिक प्रस्तार वाले जो है वो तो आरण अच्युत और आनंद प्राणत और आरण अच्युत में है, और ऊपर एक एक ग्रह का तो एक एक जुदा जुदा है। तो वो इस प्रकार है, आनत प्राणत कल्पों में 3 प्रस्तर है, आनत प्राणत और पुष्पक। इनमें पूर्वोक्त क्रम से निकाला गया आयु प्रमाण इस प्रकार है, आनत में 19, प्राणत में 19.5 और पुष्पक में 20 सागरोपम। आरण अच्युत कल्पों में 3 प्रस्तर है, आनत में कैसे निकाला, क्योंकि नीचे का जो है ना साढ़े अठारह था, हाँ, और वो 20 होने वाला है, तो 1.5 है, 3 में 1.5, प्रति एक एक पटल आधा आधा सागर बढ़ता है, यानी 19, 19.5 और 20 हो जाएगा। आरण अच्युत कल्पों में 3 प्रस्तर है, सातंकर, आरण और अच्युत। इनकी आयु का प्रमाण निकालने पर सातंकर में 20.2 तृतीयांश। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी, 2 सागर बड़ी, 2 सागर 3 में बढ़ने वाली है, तो 2 तृतीयांश बढ़ेगी, तो नीचे की 20 है, 20.2 तृतीयांश, उसमें और 2 तृतीयांश बढ़ी, 21.1 तृतीयांश, उसमें और 2 तृतीयांश बढ़ी, अच्युत में 22 सागरोपम आता है। अच्युत कल्प से ऊपर 9 ग्रवेकों के 9 प्रस्तर है, जिनके नाम है सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबद्ध, यशोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सौमनस और प्रीतिंकर। ये कौमे कौमे जहां नहीं है वहां डाल देना कौमा। इनमें आयुओं की हानि वृद्धि नहीं है, क्योंकि एक एक ही प्रस्तर है, क्योंकि प्रत्येक में एक एक प्रस्तर की प्रधानता है। इनके आयुओं की संदृष्टि यह है, ऊपर बताई है 23 से लेकर 31 तक एक एक बढ़ते हुए। 9 अनुदिशों में आदित्य नाम का एक ही प्रस्तर है, जिसमें आयु का प्रमाण 32 सागरोपम है, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। 5 अनुत्तरों में सर्वार सिद्धि नाम का एक ही प्रस्तर है, इनमें विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 विमानों की जघन्य आयु एक समय अधिक 32 सागरोपम तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम प्रमाण है। सर्वार सिद्धि विमान में जघन्य और उत्कृष्ट आयु का भेद नहीं, ये महत्व की बात है, इसलिए उसकी पृथक प्ररूपणा की जाती है। उसमें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं, एक ही समान आयु वाले है सब वहां पर। सौवर्ष सिद्धि विमान वास्य देवा केवल चिरम कालादो होती, सर्वार सिद्धि विमान में जघन्य और नीचे जीव सर्वार सिद्धि विमानवासी देव वहां कितने काल तक रहते हैं, इस सूत्र का अर्थ सुगम है। जहन नुक्कस से न 33 सागरोपमाने, जघन्य से और उत्कृष्ट से वहां 33 सागरोपम प्रमाण काल तक जीव सर्वार सिद्धि विमानवासी देव रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। ये काल प्ररूपणा गति मार्गणा में हो गई, अब इंद्रिय मार्गणा में बताएंगे। एक इंद्रियों की जघन्य और अवरी आयु नहीं लेना है, उसमें जीव कितने काल तक रहता है, जिसको हम भवस्थिति कहेंगे, लगातार एक इंद्रिय में असंख्यात पुद्गल परावर्तन वगैरह, वो बात करेंगे यहाँ पर। अब इंद्रियाणुवादेन ए इंद्रिया केव चिरम कालादो होती, इंद्रिय मार्गणानुसार जीव एक इंद्रिय जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। कहते जहन्येन खुद्दा भव गहनम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीव एकेंद्रिय रहते हैं, क्योंकि अन्य अविवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से, अब यहाँ अन्य यानी द्विंद्रिय आदि में से आए हैं, एकेंद्रिय हमारी प्ररूपणा चल रही है, आकर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर कदली घात से घातित क्षुद्र भव ग्रहण, उसको घातित क्षुद्र भव का कदली घात से घातित क्षुद्र भव ग्रहण मात्र काल रहकर अन्य द्विंद्रिय आदि जीवों में गए हुए जीव के सूत्रोक्त काल प्रमाण पाया जाता है। यानी वो घात करके क्षुद्र भव होता है, पहले भी हमने पढ़ा था। हर जगह ऐसे करेंगे घातित क्षुद्र भव द्विंद्रिय आदि में भी। अब उक्कस से ना उत्कृष्ट एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल एक जीव का, उक्कसेन अनंत कालम असंख्येज पोगल परियट्टम, उत्कृष्ट से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल तक जीव एकेंद्रिय रहते हैं। वो क को के करो, एकेंद्रिय एकंद्रिय हुआ, क्योंकि अविवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से आकर यानी त्रसों में से आकर एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर आवली के असंख्यात भाग मात्र पुद्गल परिवर्तन कुम्भार के चक्र के समान परिभ्रमण करके द्विंद्रियादिक अन्य जीवों में गए हुए जीव के सूत्रोक्त काल घटित होता है। ये मैक्सिमम उसकी, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ये इतना रह सकता है कोई जीव। अब एकेंद्रिय तो सभी एकेंद्रियों को भेद किए बिना एकेंद्रिय की प्ररूपणा की। अब बांदर एकेंद्रिय की जुदी करेंगे, सूक्ष्म की जुदी करेंगे, बादर केंद्रों में पर्याप्त की जुदी करेंगे अलग अलग। कहते बादर ए इंद्रिया केवचिरम काला दो होती, बादर एकेंद्रीय जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जघन्य न खुद्दा भव ग्रहणम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण मात्र काल तक वहां बादर एकेंद्रीय जीव रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन अंगुलस्य असंख्येज्यदि भागो, असंख्येज्या संख्येज्याओ उसप्पिनी उसप्पिनीओ, उत्कृष्ट से अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण काल तक वहां पादर एकेंद्रिय जीव रहते हैं। यानी वो अंगुल माप, जो माप है ना पल्ले का, तो हमने सुना है बरूददार, तो जैसे हमने दो को उसका वर्ग करो, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग करो, ऐसे पल्ले संख्या रखो उसका एक बार वर्ग, फिर वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, दो का जितने बार वर्ग 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 करते हुए पल्ले संख्या आई थी उतने ही और बार करो तो जाके अंगुल उत्पन्न होता है। ये बहुत बड़ा माप है। उसके असंख्यात भाग में इतने प्रदेश है कि उन प्रदेशों को समयों में कन्वर्ट करो तो कितना काल हो जाएगा, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी चले जाए। हमें तो अंगुल नहीं इतना दिखता है ना। हम आए अभी पेज नंबर 137 पर। अविवक्षित इंद्रियों वाले जीवों में से बादर एक इंद्रियों में उत्पन्न होकर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण काल तक वहां कुमार के चक्के के समान उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकलने वाले जीव के सूत्रोक्त काल का होना संभव है। यानी पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब बादर एंद्रिय पज्जत्ता केव चिरम काला दो होती प्रश्न चिन्ह। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट बताएंगे। अब पर्याप्त है ना, पर्याप्त में क्षुद्र भव नहीं लिखना, वो अंतर्मूर्त बताएंगे अभी। जघन्य न अंतोमूर्तम, जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहां रहते हैं, क्योंकि पर्याप्त जीवों में अंतर्मूर्त के सिवाय अन्य जघन्य आयु पाई नहीं जाती। उक्कसेन संख्यत जानी वास सहस्रानी, उत्कृष्ट से संख्यात हजार वर्षों तक बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहां रहते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि अन्य इंद्रियों वाले जीवों में से आकर बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर संख्यात हजार वर्षों तक उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकले हुए जीव के सूत्रोक्त काल पाया जाता है। देखो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त है ना, वो किसी भी काय वाला हो सकता है, जैसे पृथ्वी कायिक में गया तो 22,000 वर्ष तो एक थोड़ी आयु होगी, कितने भव वहां करेंगे। जलकायिक में कितने होते हैं मैक्सिमम, 7,000 वर्ष होती है। वनस्पति में 10,000 वर्ष की हो सकती है, वायुकायिक में 3,000 वर्ष की हो सकती है, अग्निकाय में तो ठीक है 3 दिन रात की होती है, परंतु इसमें एक से अधिक भव करेंगे ना तो भी हजारों वर्ष हो जाए, इसको संख्यात हजार कहेंगे। मैंने करोड़ों को भी वहां संख्या हजार ही कहेंगे। ख्याल में आई बात, क्योंकि यहाँ बादर एकेंद्रिय इन जनरल लिया पर्याप्त, उसमें निगोद भी आ गए सब भी कुछ। अब पूछते हैं शंका, संख्यात हजार वर्षों से अधिक काल तक जीव बादर एकेंद्रिय पर्याप्तकों में क्यों नहीं भ्रमण करता। समाधान, नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान से निकले हुए वह समस्त प्रमाणों से अधिक प्रमाणभूत इस जिन वचन के संबंध में विसंवाद नहीं हो सकता। क्या कहा कि बादल अधिक रहने को क्या जाता है, तो ये कहां से वचन निकला है, तो केवल ज्ञान से और समस्त प्रमाण से भी अधिक प्रमाणभूत। केवल ज्ञान से निकले हुए वो समस्त प्रमाणों से अधिक प्रमाणभूत जिन वचन के संबंध में विसंवाद नहीं हो सकता। अभी आपके सभी प्रश्नों के लिए यही उत्तर है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा पृथ्वी गोल देखी है, तो आप ऐसा कहते हैं, ऐसा क्यों, स्त्री को मोक्ष नहीं होता क्यों, ये सब उसमें उतर आ गए। केवल ज्ञान ने जो जानकर बताई हुई बातें हैं वो सभी प्रमाणों में प्रमाणभूत है, इसमें कोई विसंवाद नहीं हो सकता। अब हम आते हैं पृष्ठ संख्या 138 पर। ये जितने भी प्रश्न उठते हैं ना, तभी यही एक वाक्य ख्याल में रखना। ऐसा लगता है ना कि दिगंबर जैनियों को क्यों समय दर्शन होता है, अन्य को क्यों नहीं हो सकता, ये रामचंद्र राज कौन राम कौन सा रामकृष्ण परमहंस उसको क्यों नहीं हो सकता, उनकी ईश्वर संबंधी क्या मान्यता थी। सच्चे देव गुरु शास्त्र संबंधी सही मान्यता, ये तो पहली कंडीशन है। सात तत्व के बारे में सही मान्यता तो प्रतीति सबको होगा, कब ये सही मानेंगे तब। अन्य धर्मियों को कैसे दिगंबर यानी नहीं हो सकता। उसकी ईश्वर संबंधी मान्यता सही नहीं होगी तो उसको हो नहीं, अभी उसको नहीं हो सकता। अभी ये बाकी, अरे सुनो, ये सब जो आती है ना बातें, हाँ दिगंबर मुनि होकर ही जाते हैं, मत कम ही जाते हैं जीव मोक्ष में। हाँ पुण्य विधेय क्षेत्र है ना, अभी अभी यहाँ क्यों देख रही है? क्या भरे पड़े हुए हैं, होने दो ना, परंतु कंडीशन ये जिसने किया है उसको देव गुरु शास्त्र संबंधी सच्ची अगर उसकी मान्यता हो तो ही उसको है, ये तो नक्की करो बाहर में। हमारे हिसाब से नहीं, जिनेंद्र भगवान के हिसाब से, हमारे हिसाब से कुछ हिसाब नहीं चलता, हमारा केवली के वचनों का हिसाब चलता है। वो है किसने कहा, उन्होंने अपने को बता दिया, घोषित किया, इसलिए हो गया। समझ में आई बात? ये कोई भी कहेगा मुझे समय दर्शन है, होने दो ना, हमारी कहा ना आने, पर हम उसका देखो निमित्त को देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। निमित्त में उसके अभी देवगुरु शास्त्र की सच्ची श्रद्धा नहीं है। तुम शुभ भाव से तुम्हारा कल्याण होगा, अमुक करो तो तुम्हारा हो गया, ऐसा जो कहता है, क्या उसके ईश्वर संबंधी सही मान्यता है? अरिहंत सिद्ध का स्वरूप सही जाना है कि कपड़े सहित मुनि मान रहा है कि कपड़े रहित मान रहा है? बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया कि हम उसके बाह्य आचार विचार, उसका उपदेश कथन सुनकर ये नक्की कर सकते कि ये समय दृष्टि नहीं है। और समय दृष्टि हुआ तो क्या हुआ, वो क्या भगवान हो गया क्या? ये समय वो आपने देखी क्या पहचान है कि नहीं है? देखो अभी क्या है, बड़े पड़े है, वो तो समय दर्शन बांटने वाले भी है बहुत सारे, अभी है ऐसे कोई? वो सब गुणस्थान देंगे, समय दर्शन देंगे, उनकी तो सभा में बटता है वो समय दर्शन। ये उसके बारे में बहुत भ्रमणा चल रही है, समझ में है? अभी यही वो एक नया मिथ्यात्व और पैदा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है तो नहीं होगा। काहे का अरे पर कैसा नक्की किया आपने, लक्षण क्या नक्की किया? ऐसा नहीं है, ऐसा चौथे गुणस्थान वाले का बाहर से कोई पता नहीं चलेगा आपको, कोई है और आपको उसका नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, उसमें क्या है? नहीं और माने तो नुकसान है और नहीं मानोगे तो कोई नुकसान नहीं है, और नहीं है तो उनको मानना ये नुकसान की बात है। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कोई समय दृष्टि नहीं है और उसको समय तो है करके, और फिर उसका जो कहता है वो सच मान लिया आपने। अभी हमारे पास आगम है ना इतने भरे पड़े, अभी हमारा शास्त्र नहीं चलेगा, वो सर्वज्ञ के साथ वो उसकी कंटिन्यूटी चाहिए, ये हमारा शास्त्र नहीं होता। दिगंबर आचार्यों के शास्त्र है क्या वो? ये सब देखो मुख जैसा उत्कृष्ट कार्य है, वो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। कोई कहते ये हीरा है ले लो और कांच दे दे आपको, तो लाखों रुपया देंगे करोड़ों रुपया उनको? बहुत हीरे है इस विश्व में, और सोना बोलकर पीतल दे दे आपको, ले लेंगे आप? ये कोई कहने से क्या होगा, क्योंकि जिसको अपना दुकान चलानी वो कहेगा ही, और लोग उसको मानते, इसलिए क्या हो गया, हजारों लोग उसी के पास जाते हैं, उसकी बहुत चर्चा है, उसके कई कुछ उसको समय दर्शन ऐसा नहीं है, नक्की करना पड़ेगा। दलील अभी कांजी स्वामी ने तो सब पढ़े थे, देखो उनकी अपनी मान्यता छोड़कर उनको ये हो सकता है, कहां जन्मा उससे कुछ मतलब नहीं है। कितने ही हमारे जो आचार्य हो गए हैं ना पूर्व में, कितने हिंदू थे वो छोड़ गए और जैन बन गए, कितने श्वेतांबर थे उन्होंने छोड़ दिया वहां पर। अभी कांजी स्वामी ने क्या किया, बनारसी दास जी ने क्या किया, वो तो श्वेतांबर में थे। जब मान्यता छोड़ी तब उनको हुआ है, सही मान्यता लेने पर ही होगा, बिना सही मान्यता के। तो है ही नहीं है। नहीं सिखाते, क्यों नहीं सिखाएंगे, वो कितना खोटा हो जाएगा। समय दृष्टि ऐसा वो गलत कैसे सिखाएगा, यानी वो समय दृष्टि नहीं है। देखो दुनिया में तो हम बहुत होशियार है, कि पद पद पर कोई ठगाने वाले हैं, तो फिर जहाँ अच्छा सही माल मिलता है वहीं जाके लेते हो, कि चाहे फुटपाथ पर जो बेचते हैं उससे लेते, तो ऐसे बहुत सी दुकानें चलेगी। और सम्यक दर्शन नाम से क्या है, आपको मूल में सारा तत्व की पहचान होनी चाहिए, मूल आगम है हमारे पास। ये श्वेतांबर दिगंबर कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है वहां पर, ये मान्यता जो है वस्त्र सहित जो मुनिपना मान रहे हैं वो बात नहीं हो सकती उस गुणस्थान में। प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप जुदा जुदा है। आप कहेंगे उनको वस्त्र सहित चौथा होने में क्या बाधा है, वस्त्र सहित चौथा होने में ये बाधा है कि उन्होंने मुनि का स्वरूप क्या है वो सही नहीं पहचाना। देव को भी उन्होंने वस्त्र चढ़ा दिए, मुकुट चढ़ा दिए, ये उनकी मान्यता सही नहीं। देव संबंधी देव तो पूर्ण वितरागी होते हैं, और पूर्ण वितरागी अवस्था में उनके कैसे कोई ना वस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना कोई अलंकार है, ना कुछ है। दिगंबर अवस्था मुनियों की होती है, तो भगवान की कैसे होगी सवस्त्र अवस्था, ये विचार करिए। और इधर उधर सौ जगह आप दौड़ा दौड़ी करती है ना, शांतता से जो तत्व आप सुनती हो उस पर सही विचार करो, क्योंकि आपको जानने की बहुत उत्सुकता है, इसलिए आप इधर उधर भटक रही है। भटक रही है तो भी सच्चा मार्ग मिलने पर भी आपकी भटक नहीं समाप्त हुई है। ये कैसा हो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। पहले का जमाने में वो तो पारस मणि आपने सुना होगा, है ना, वो क्या होता है, पारस लोहे को टच करते तो सोना हो जाता है। तो क्या एक ने चाह कि नहीं नहीं मैं तो पत्थर पत्थर को जांचूंगा और वो मुझे तो पारस मणि चाहिए। तो वो तो हाथ में उन्हें कड़ा पहना था लोहे का, पत्थर को टच करता था फेंक देखता था, नहीं हुआ फेंक देता, देखता था नहीं हुआ फेंक देता था, उसको वो आदत ही लगी। ऐसा करते 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 बहुत घूमा, बहुत सारे पत्थर टच करते करते, तो ऐसा करते करते एक बार देखा, अरे ये तो सोने का हो गया, सोने का हो गया ना, उसको पत्थर सही पारस मिला था पर उसको मालूम नहीं था। वो मिलने के बाद भी वो तो पागल जैसा हुआ था, वो सोने को भी टच करता था, यानी उसको तो पत्थर मिलकर भी चला गया था, उसने पहचाना नहीं उसको, और फिर भी वो और भी ढूंढ रहा है। यानी आपको सही मार्ग भी मिल रहा है फिर भी अभी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अभी भी आप इधर उधर भटक रही हो। इसने कहा ये समय दृष्टि, उसने कहा वो बाइक को समय दृष्टि, उसको देखने गई। समय दृष्टि को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बताने का प्रयोजनवश बताएंगे, हमारे आचार्य भी कहते हैं, परंतु वो तो ऐसा उसका जैसे किस प्रयोजन से कह रहे हैं। ओके। हाँ जाहिरात नहीं, बताना प्रयोजन वो अलग है, और उसके जाहिरात करने, उसको देखने जाना, उसके भीड़ जमाना, ये बात नहीं होती उसके। वो आगम का कथन करेगा कि अपनी बढ़ोतरी करेगा। ये जब पंचलब्धि पुस्तक है उसमें देशनालब्धि के बारे में बहुत सारे प्रश्न जो हमें उठ सकते हैं, उसकी बात पढ़ो उसमें से। ये महत्व की बात है, यानी आपको ये सही आचार्यों की बात मिलकर भी आपको उसमें सुन तो रही है, आप बहुत दोनों टाइम आती हो, तीनों प्रवचन सुनती हो, बहुत रुचिपूर्वक सुन रही हो, परंतु अभी भी अरे वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो, ये बहुत चल रहा है आपके मन में, चल भी चल हो रही है आपकी। नहीं आपको तो वो भूत है, परंतु तो बाहर बाहर के वो भूत भूत जो है ना, ये समय दर्शन कहाँ से आता है? पर्याय के द्रव्य है वो, पर्याय कहाँ से निकलती है? द्रव्य में से निकलती है। कब निकलेगी? अरे अपनी जो मैं स्वयं जो सामर्थ्यवान हूँ उसकी महत्ता आने पर होती है, कि समय दृष्टि की महत्ता आने पर होती है। तो स्वभाव की तो महिमा आती नहीं है, और इसको समय दर्शन होगा, उसको समय दर्शन होगा, आपको समय दृष्टि के बाह्य लक्षण की तक खबर नहीं है। बंद है, फिर से लगा लो। देखो कहाँ जाते हमको नाम से कोई, हाँ अभी दूसरा लगा लो फिर जरा एक मिनट। हाँ हाँ ठीक। देखो पेज नंबर 138 पर आए हम, देखो 130 बादर ए इंद्रिय अपज्जता केवचिरम कालाद होती, 48 नंबर का सूत्र। बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त जीव वहां कितने काल तक रहते, पहले पर्याप्त की बात पूछी थी, तो पर्याप्तों में जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट संख्यात 1000 वर्ष। हाँ अभी मैं रखती हूँ इसके सामने, स्पीकर के सामने, पेज नंबर 138 पर है। हाँ यह हमने अभी 48 नंबर के सूत्र को पढ़ा था कि बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव, अपर्याप्तों की बात है, वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। अब जगन्य ने एक ही भोग, शुद्र भोग, और मैक्सिमम भी अपर्याप्त अपर्याप्त अपर्याप्त, वो भी अंतर्मूर्त होगा। तो जघन्य न खुद्दा भव ग्रहणम, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव वहां रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उक्कस्य न अंतोमुहूर्तम, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक एकेंद्रिय बादर अपर्याप्त जीव वहां रहते हैं, क्योंकि अनेक हजारों बार, कितने बार, अनेक हजारों बार उसी पर्याय में पुनः पुनः उत्पन्न हुए जीव के भी अंतर्मूर्त को छोड़ और ऊपर की आयु स्थितियां नहीं पाई जाती। मैंने अनेक बार भी वहां पूरे एकेंद्रियों के भी हम 66,132 तो सारे एकेंद्रिय आ गए, उसमें तो सूक्ष्म भी है बादर भी है, वो सबके अपर्याप्त अवस्थाएं वहां ली थी, तो यहाँ तो बादर की ले रहे हैं।
वो वही लेना ना, 18
हाँ और वो कदली घात वाला लेना, उसमें वो मिनिमम आयु जो बंधने वाली आयु जो है ना, उससे भी कदली घात से जो रिड्यूस हो जाती वो और छोटी है, वो लेना। इसको कहते जीवनीय आयु। एक बंधनीय आयु होती है, बंधी हुई आयु, तो मिनिमम जो बंध है वो जो मिनिमम बंध है उसका कदली घात नहीं होता, पर जो कोई मिडिल मध्यम जो है उसका कदली घात होकर वो बंधी हुई आयु से भी कम हो जाता है, मिनिमम बंधनीय से भी कम हो जाता है, तो उसको कहेंगे क्षुद्र भव। यहां इसीलिए लिखा अनेक हजारों बार उसी पर्याय में पुनः पुनः उत्पन्न हुए जीव के भी अंतर्मूर्त को छोड़ और ऊपर की आयु स्थितियां नहीं पाई जाए, यानी लगातार तो अनंत काल तक अपर्याप्त होता है, ऐसा कभी नहीं होगा, अंतर्मूर्त तक ही रहेगा, बीच में एकाध पर्याप्त भव करके फिर उसमें चला जाएगा। अब पूछते सुहमय इंद्रिया केवचिरम कालादो होती, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव वहां कितने काल तक रहते हैं, यह सूत्र सुगम है। जहन्नेन खुद्दा भव गहनम, यानी सूक्ष्म संबंधी अपर्याप्त का भोग किया उसने, जघन्य से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव क्षुद्र भव ग्रहण काल तक रहते हैं, यानी एक भव लेना उसका, यह सूत्र भी सुगम है। उपकस्य न असंख्य जालोका, देखो ये महत्व की बात है, उत्कृष्ट से सूक्ष्म एकेंद्रीय असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जीव वहां रहते हैं। असंख्यात लोग समझे, देखो अंगुल का असंख्यात भाग इतना सा देखा तो उसमें असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी, तो अंगुल इतना है तो लोक पूरा लोक कितना बड़ा है, अरे ऐसे असंख्यात लोक लेना, उसमें जितने प्रदेश है उसको समयों में कन्वर्ट करो तो कितना लंबा काल होगा। तो कोई जीव सूक्ष्म एकेंद्रीय हुआ और मरकर फिर सूक्ष्म एकेंद्रीय में जन्म मरण करता रहा तो इतना लंबा काल है, पर देखो उसमें एक जैसे जिसको कहेंगे ना हम जो पर्याप्त में लगातार रहने का काल अंतर्मूर्त, अपर्याप्त में लगातार रहे तो भी अंतर्मूर्त, तो हमें लगता है पर्याप्त और अपर्याप्त का मिलकर दो अंतर्मूर्त होगा, नहीं, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक जीव सूक्ष्म एकेंद्रीय में काल बिताता है, उसी में अंतर्मूर्त के बाद पर्याप्त का अपर्याप्त हो जाएगा, अपर्याप्त का पर्याप्त हो जाएगा, परंतु सूक्ष्म पर्याय उसने नहीं छोड़ी है, यानी कभी सूक्ष्म निगोद, कभी सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, पांचों ही सूक्ष्म जीवों में घूमेगा, सूक्ष्म पर्याय नहीं छूटी, ये उसका अर्थ लेना। हाँ तो कहते जघन्य से वो क्षुद्र भव और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण काल तक। अब आते 139 पृष्ठ पर, अन्य इंद्रियों वाले जीवों में से आकर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों में उत्पन्न होकर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक तपाए हुए जल के समान उसी पर्याय में परिभ्रमण करके निकले हुए जीव में सूत्रोक्त काल पाया जाता है। तपाए हुए जल के समान, अच्छा उसी पर्याय में परिभ्रमण करता है, यानी उसकी बाह्य अवस्थाएं बदल कर वही रहता है। शंका, बादर एकेंद्रीय जीवों की स्थिति से, बादर एकेंद्रियों की कितनी स्थिति देखी याद है, अंगुल का असंख्यात भाग है ना, आप क्या कह रहे हैं पर्याप्त की नहीं, बादर एकेंद्रीय अंगुल का असंख्यात भाग, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवन की स्थिति अधिक क्यों नहीं हुई, हाँ मादर एकेंद्रीयों की स्थिति से ने उसे एक भव लेना चाहिए। सूक्ष्म एकेंद्रीयों की स्थिति अधिक क्यों नहीं हुई? समाधान नहीं, क्योंकि बादर एकेंद्रीय जीवों में जितनी बार आयुबंध होता है उनसे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के असंख्यात गुणी अधिक बार आयु के बंध होते हैं। पर उन्होंने ऐसा प्रश्न स्थिति क्या बताए पूछे, बादर ठिदी दो किमठम सुहम ठिदी च अभया ज्यादा देखो देखो प्रश्न क्या देखो, बादर ठिदी दो बादर स्थिति से किमठम सुहम ठिदी न है क्या वो न अभया ज्यादा यानी उसके उसमें बहुत ज्यादा क्यों होते, बस इतना ही कहना है उनको। यानी कि बादर एकेंद्रीय जीवों में जितनी बार आयु बंद होता है उनसे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के असंख्यात गुणी अधिक बार आयु के बंद होते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं निकालो, कुछ मत शंका। यह कैसे जाना कि सूक्ष्म एकेंद्रियों के बादर एकेंद्रियों की अपेक्षा असंख्यात गुणी बार अधिक आयुबंध होते हैं? इस जैन वचन से ही यह बात जानी जाती है। यह अपने समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने अधिक बार वो सूक्ष्म एकेंद्रियों की आयु बांधता है या उस पर्याय में वो आयु का बंध ज्यादा बार करता है, बस इतनी बात है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ 5 मिनट है ना अभी। चौवन नंबर, सूम इंद्रिया पज्जत्ता केव चिरम काला दहुंती, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव कितने काल तक वहां रहते हैं? यह सूत्र सुगम है। जघन्येन अंतर्मूर्तम्, जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त तक रहते हैं, यह सूत्र भी सुगम है। उपकस्येन अंतर्मूर्तम्, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव वहां रहते हैं। यानी अपर्याप्त में रहने का भी अंतर्मूर्त पर्याप्त में भी रहता, और कभी पर्याप्त अपर्याप्त तो कहते असंख्यात लोग, क्योंकि अनेक सहस्र बार उसी उसी पर्याय में उत्पन्न होने पर भी अंतर्मूर्त से अधिक सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की भवस्थिति नहीं पाई जाती है। हमने देखा ना वो 6012 होते हैं ना वो सूक्ष्म के नेचुरली मादर मिलके 66132 है, तो हर एक के सेम लिए है 66132 डिवाइडेड बाय 11 किए थे, उसमें 5 तो सूक्ष्म है और 6 बादर है, सारे एकेंद्रिय है। तो अनेक सहस्रवार उसी उसी पर्याय में उत्पन्न होने पर भी अंतर्मूर से अधिक सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की भवस्थिति नहीं पाई जाती। देखो यहाँ भवस्थिति शब्द बताया और वहां केवल स्थिति लिखा था, यानी वहां एक भव की बात हो गई शायद। हाँ यानी अधिक क्यों नहीं हुई जीवों की स्थिति, अधिक क्यों नहीं, यानी एक उसकी आयु स्थिति अधिक क्यों नहीं हुई, क्योंकि इतने लंबे काल तक रहता है तो उसकी आयु बड़ी होगी, तो कहते ऐसा नहीं है। यानी इतना लंबा काल है तो वहां पर उसके आयु भी बड़ी होती होगी, ऐसा वहां प्रश्नकार का कहने का उद्देश्य था। हाँ अब यही रुकते हैं, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, फिर मैंने हमने मादर एकेंद्रिय, फिर मादर एकेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय, इतनी बात हो गई अपनी, ये यहाँ से कल देखेंगे। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त तक के होगी बात अपनी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देव।